देवला पुस्तक 10वीं लेक्चर नंबर 8।
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं वेदगवेदगवेदगं अवेदगं वेदगन्तसंसिद्धं सिद्धं प्रणमीय सरसा कोच्चं वेदगमहायारमः।
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीर शिव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। दसवीं पुस्तक जो बंधक वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 44 पर आ गए, 44। यहाँ अपनी अभी स्थान की चर्चा चलेगी, प्रकृति स्थान उदीर्णा। अभी तक हमने एक एक प्रकृति उदीर्णा देखी थी, उत्तर प्रकृतियों में एक एक प्रकृति उदीर्णा देखी थी, अलग अलग चर्चा की थी। अब प्रकृति स्थान उदीर्णा कहते हैं तो एक जीव के एक काल में जितने प्रकृतियों की उदीर्णा संभव है उसको उसका स्थान कहेंगे। यह मात्र मोनी की बात चल रही है, अन्य की नहीं। तो उसमें भी 17 नियोग द्वार है। पहले समुत्कीर्तना, यानी स्थानों की समुत्कीर्तना बताते हैं। तो उसमें पहले में बताया था कि एक प्रकृति का प्रवेशक जीव है, प्रवेशक जीव है ने
उदीर्णा करने वाला है।
हाँ, एक का उदीर्णा करने वाला है। उसके बाद दो प्रकृतियों का, एक का कब कहते हैं, मात्र संज्वलन किसी एक का उदय है, नवे गुणस्थान के दूसरे भाग से लेकर।
पहले भाग में अवली काल से शुरू हो जाए, एक अवली बाकी रहती है।
हाँ, तब शुरू हो जाएगा। पहले भाग में एक अवली बाकी रहने पर वेद की उदीर्णा रुक जाती है, उसका उदय चल रहा है, परंतु संज्वलन का वहाँ उसकी उदय उदीर्णा शुरू है। फिर कहते दो प्रकृतियों का प्रवेशक जीव है, एक वेद और एक कषाय। ये कब होगा तो अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय से लेकर, अभी जो हमने आवली शेष रहती है तो उसकी वेद की उदीर्णा रुक जाती है, तो रुकने के पहले और अनिवृत्तिकरण के पहले समय से आगे दो का उदय है, उदीर्णा है, एक वेद और एक संज्वलन, वो भी हमने कल देखे। उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे 44 पृष्ठ पर, तिन्नम पयडीनम पवेशगो नत्थी। क्या कहा?
तीन का
नत्थी, यानी तीन का उदय वाला उदीर्णा वाला नहीं है ये, क्योंकि आठवें के अंत में क्या है, कितने
दो का उदय चालू हो जाएगा एक साथ।
आठवें के अंत में कितने होगा?
एक्चुअली तो चार का हास्यरति अरति सो
भेजोगे। कितने प्रकृतियों की होगी?
नहीं, दो की भी होगी।
एक कषाय, एक वेद, एक युगल, ये कितने हुए?
चार। एक साथ चार का होगा, पांच का भी हो सकता है।
चार ये हुए, अब एक भाई आए, एक युवक आए तो पांच हो जाएंगे, और दोनों आएंगे तो छह हो जाएगी, यानी छह पांच या चार। तीन का होगा उदय या उदीर्णा, तीन वाला स्थान नहीं है। छह पांच और चार हो गए, तीन वाला नहीं होगा। ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहां तीन की उदीर्णा या उदय हो रहा है। उदय के स्थान जो हमने देखे थे मिथ्यात्व से लेकर, दस का है, नौ का है, आठ का है, सात का है, नौ आठ सात तो आगे भी रिपीट होते चले जाएगी, फिर छह पांच चार तो अभी हमने देखे, तीन वाला नहीं है। दो वाला है एक वाला है। ये उदय स्थान, अभी हम उदीर्णा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ उसको प्रवेशक कहा। तो तीन प्रवृत्तियों के प्रवेशक जीव नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त दो प्रकृतियों के ऊपर अपूर्वकरण में प्रवेश करते समय हम उल्टा सोच रहे हैं ना, ऊपर से नीचे। हास्य रति और अरति शोक, इनमें से अन्यतर युगल के, यानी कोई भी एक युगल युगत युगपत प्रवेश करने पर तीन प्रकृतिक स्थान की, तीन प्रकृति यानी तीन प्रकृति वाला स्थान की उत्पत्ति नहीं होती, यानी तीन प्रकृतिक स्थान यहाँ नहीं पाया जाता। चौन्नम पयडीनम पवेशगो, चार प्रकृतियों का प्रवेशक जीव है यहाँ पर, अस्थि इस पद का अधिकारवश संबंध कर लेना चाहिए। अधिकार कौन सा चल रहा है लक्ष्मीबेन, उसमें से अधिकार कौन सा चल रहा है? समुत्कीर्तना। तो समुत्कीर्तना स्थान में समुत्कीर्तना,
प्रकृति स्थान,
उसमें जो 17 अनुयोग द्वार हमने देखे हैं, उसमें से कौन सा चल रहा है यहाँ? 17 ही है ना, कितने देखे हमने? हाँ, उसमें से पहला जो, हाँ, समुत्कीर्तना। समुत्कीर्तना का ही अर्थ होता है उसकी अस्थि बताना, इसलिए कहते हैं अधिकारवश अस्थि इस पद की यहाँ हम अनुवृत्ति करेंगे, उसको लगा लेंगे। यहाँ लिखा ना अस्थि पद का अधिकारवश संबंध कर लेना चाहिए, इसलिए है ऐसा बता दिया। तदनुसार उपशम सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत तथा अपूर्वकरण जीव के हास्य रति और अरति शोक, इन दो युगलों में से अन्यतर युगल के साथ अन्यतर एकवेद और अन्यतर एक संज्वलन प्रकृति को लेकर, यानी एक संज्वलन, एक वेद और एक युगल, दोनों में से कोई एक, ये चार प्रकृतिक स्थान होता है। तो उस कहाँ होता है, तो अभी अभी हमने अपूर्वकरण में देखा, और कहाँ होता है? छठे सातवें, कौन सा होना चाहिए?
एक।
कौन सा होना चाहिए छठे सातवें वाला, उसमें क्या कंडीशन लागू होगी? हाँ, सम्यक तो नहीं होना चाहिए, नहीं क्या होना चाहिए?
उपशम
ही अक्षायिक होना चाहिए, तभी तो संभव है। वेदक होगा तो एक सम्यक प्रकृति बढ़ जाएगी, तो पांच का हो जाएगा। वेदक सम्यक दृष्टि को मिनिमम पांच का हो जाएगा, और यहाँ हम चार का चाहते हैं, तो छठे सातवें में चार का स्थान है, किसके है? औपशमिक या क्षायिक वाले, औपशमिक या ऊपर लिखा था, अभी हमने पढ़ा था, शायद आपने गौर नहीं किया। देखो सेकंड लाइन में उपशम सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि, तभी पढ़ा तभी तो उसकी ख्याल में नहीं आया क्यों डाला है। तो उपशम सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, यानी उन दोनों के लिए कंडीशन है, तथा अपूर्वकरण जीव के, अपूर्वकरण वाला तो नियम से औपशमिक या क्षायिक ही होता है। हास्य रति और अरति शोक, इन दो युगलों में से अन्यतर युगल के साथ अन्यतर एक वेद, यानी एक युगल है, एक वेद है और अन्यतर एक संज्वलन, इनको लेकर चार प्रकृतियों का प्रवेशक रूप से अस्तित्व सिद्ध होता है, यानी चार प्रकृतियों के प्रवेशक वाले जीव वहां पाए जाते हैं। एक तो पाए निरंतर मत्थि जाव दसन्नम पैडीनम पवेशगो, अभी चार से लेकर चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस तक सभी है स्थान, दस से ज्यादा भी होगी कि नहीं होगी?
नहीं।
इससे लेकर दस प्रकृतियों के प्रवेशक जीव के प्राप्त होने तक इन स्थानों का प्रवेशक जीव निरंतर है।
अपनी भाषा में ये स्थान पाए जाते हैं, यानी चार वाला भी है, पांच वाला भी है, छह वाला है, वो किसके होता है वो विषय यहाँ नहीं है, है कि नहीं इतनी बात है। तो हमने उदय के स्थान कितने देखे, उदीर्णा की अभी हम बात करेंगे, बोलो।
एक दो चार,
कितने देखे मैंने पूछा?
नहीं, नौ
नौ देखिए,
एक तीन छोड़,
एक से लेकर दस में से तीन वाला स्थान नहीं है, तो नौ देखिए, बहुत अच्छा। चार प्रकृतियों के प्रवेशक जीव से लेकर दस प्रकृतियों के प्रवेशक जीव के प्राप्त होने तक इन स्थानों का प्रवेशक जीव है, इस प्रकार यह सूत्रार्थ संबंध है। यानी इतने इतने वो उदीर्ण के स्थान, उसको प्रवेशक कहा, यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके ऊपर मौन्य कर्म के उदीर्ण स्थान नहीं है, इसके ऊपर है ना, दस के ऊपर नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट रूप से उदीर्णा को प्राप्त होने वाली प्रकृतियां दस संख्या को उल्लंघन नहीं करती। उदय वाली नहीं करती तो उदीर्णा वाली कैसे करेगी। इस प्रकार समुत्कीर्तना अनुयोग द्वार के आश्रय से कहे गए उदीर्णा स्थानों की यह संदृष्टि है, एक दो चार पाँच छ सात आठ नौ और दस। इस प्रकार ओघ से समुत्कीर्तना समाप्त हुई। अब आदेश से कैसे सोचना, कौन कौन से स्थान हो गए। ओघ में तो ये एक वाला भी था, दो वाला भी था, चार वाला भी था। अब आदेश से सोचना पड़ेगा कौन सी मार्गणा में। तो नरक में होते ही चार गुण स्थान,
दस नौ आठ,
तो वहाँ क्या क्या होगा,
दस नौ आठ सात,
ने उनको बताने दो ना। हाँ, कौन से पहले, एक वाला, दो वाला, एक वाला, दो वाला, चार वाला, नहीं होगा, पांच वाला होगा कि नहीं। नरक में पांच वाला स्थान बताओ कहाँ होगा,
होगा ना,
मालूम नहीं। अच्छा, आप क्या कहते हैं, अरे एक बार लिखा, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है।
नहीं, मैंने देखा।
तीन चाहिए।
अब आदेश प्ररूपणा करते हैं। हमने सर्व नौ सर्व जघन्य जघन्य में देखा था कि तिर्यंच में पांच का स्थान होता है, निकालो, क्योंकि पांचवा गुण स्थान है और औपशमिक सम्यक तो है, शायिक याद है ना, शायिक उसमें नहीं होता, आपने बताया था शायिक वाले को होगा पांचवे गुण स्थान में,
नहीं है
तो पांचवे गुण स्थान में, तो पर चौथे में, चौथे में एक शायिक हो या औपशमिक हो तो उसके मिनिमम कितना होगा, एक यानी दर्शन मोनीय नहीं है,
तीन
अनंतानुबंधी के तीन, यानी अनंतानुबंधी नहीं है, अन्य तीन है,
तीन कषाय,
तीन कषाय हो गए, यानी कोई एक क्रोध मान या माया,
तीन कषाय, एक वेद,
एक वेद, एक युगल, इतने तो मिनिमम हो गए ना, छह हो जाए, तभी नरक में कैसे लेना। मैंने भी आगे नहीं पढ़ा है तो नहीं, कोई बात नहीं है, फिर भी कैसे विचार करना है, ये तो तत्काल विचार करके ही हमें निकालना है। हाँ, डिसीजन लेना, ये कुछ रखने की बात नहीं है, याद रखने की भी नहीं है, शायद क्या ऑप्शन में लेना पड़ेगा, तो पहले नरक में होगा, ख्याल में ना, पहले नरक, ये उदयकुट की बात उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने तो डायरेक्ट उदीर्ण, हाँ हाँ हाँ, अपने यहाँ विषय नहीं हुआ है ना, वैसे तो हमने पहले कर्मकांड पढ़ा था, तभी उसके भी बहुत साल हुए, 2002 में या तभी हमने पढ़े,
तीन में हुआ,
तीन में हुआ, अच्छा। ये तो हम सामने पढ़ते तो कहीं तो क्लिक होता है, नहीं नहीं इससे ये बात ख्याल में आ जाएगी, यहाँ तो कहीं लिखा नहीं कि उदय के कुट देखो या ऐसा कुछ है, हम ही सोचे स्वयं। तो नरक में तो चौथे गुण स्थान में औपशमिक वाले भी हो सकते, वो तो सभी नरकों में होते हैं, और क्षायिक वाले पहले नरक में हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे। अब आदेश प्ररूपणा करते हैं, समुत्कीर्तना की आदेश प्ररूपणा चल रही है, उसकी अपेक्षा मनुष्य त्रिक में ओघ के समान भंग है, क्योंकि मनुष्य त्रिक में श्रेणी मांडी जाती है, तो उनमें एक वाला, दो वाला, चार वाला, पांच वाला सभी स्थान होगी। नारकियों में, अभी नारकियों की बात करें, दस नौ आठ सात और छह प्रकृतियों के प्रवेशक जीव हैं। तो
तो मिथ्यात्व में कौन कौन से स्थान हो गए इसमें से?
10, 9, 8 और 7।
और 7 किसको होगा? सोचने दो लोगों को, सोचने दो। आप सभी उत्तर देंगे तो कोई यहाँ बैठेगे नहीं, या वो तो जो कुछ सुनते हैं बस सुनकर चले जाएंगे। उनको डिराइव करना आना चाहिए। बिल्कुल, अब एक पट्टी लगाओ अभी इससे।
देखो फाइन
फाइन से भी कुछ नहीं, वो तो आप पहले फाइन भर दोगे। अनंत अनुबंधी की विषय योजना के बाद जो जाता है तो उसकी एक मिथ्यात्व का तो उदय है और 3 कषाय का उदय। अभी अनंत अनुबंधी का उदय आवली काल तक नहीं होगा। विषय योजना करके जो मिथ्यात्व में गया है उसकी बात है। तो कषाय में से 3 लेने, 3 क्रोध या 3 मान जो कोई है, और फिर एक वेद, एक युगल और भजगुप्सा को 0 रखना। कितने हुए?
6।
फिर से
3
कषाय,
1
वेद,
2 युगल, 10, 9, 8, 7
होते हैं ना।
मिथ्यात्व को नहीं लिया ना आपने,
मिथ्यात्व को लेना है।
हाँ,
अरे मिथ्यात्व का तो उदय है ना।
मिथ्यात्व का तो पहले से
मिथ्यात्व 3 कषाय,
3 कषाय मिथ्यात्व।
देखो, हाँ, क्यों अनंतानुबंधी का अवली तक उदय नहीं है, मिथ्यात्व का तो है ना। मिथ्यात्व में आ गया है जीव, जीव मिथ्यात्व में आया है,
संयोजना
करके आया है, संयोजना हुई है, संयोजना हुई है। अनंतानुबंधी का बंध शुरू हुआ है, उदय 1 अवली तक नहीं होगा। तो उदय कितने कषायों का होगा? यानी 3 का होगा, 3 क्रोध या 3 माया। तो 1 मिथ्यात्व, 3 कषाय, 1 वेद और 1 युगल, मिनिमम 7 होगा। 8 में तो दोनों में हो सकेगा। 9, 8, 7 जो है वो अनंत अनुबंधी के उदय सहित स्थान है। 10, 9, 8, 9, 8, 7 फिर से मैं दिखाती हूँ आपको बोर्ड पर, तो आपको ख्याल में आएगा। हम पहले अनंतानुबंधी रेगुलर मिथ्या दृष्टि लेते हैं। 1 मिथ्यात्व है, ये 4 क्रोध या 4 मान, 3 में से 1 वेद, 1-1 युगल। अब भय जुगुप्सा में 4 ऑप्शन है, 2 या 1 भय, 1 जुगुप्सा या 0, इसको अलग रखेंगे। इसके कारण अलग अलग स्थान बनेंगे। तो मिथ्या दृष्टि के बेसिक कितने? 1 मिथ्यात्व, 4 कषाय, 1 वेद, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8। 8 हुए? नहीं, 4, 1, 5, 6, 2, 8। हाँ, तो 8 हो गए या 9 हो गए या 10 हो गए। यानी रेगुलर मिथ्या दृष्टि के कितने? 9, 10, 10 वाला, 9 वाला, 8 वाला। अब अनंतानुबंधी का जो विषय योजना करके आया है आवली काल तक, उसके 4 के बदले यहाँ 3 हो गए। तो बेसिक जो हमने लिए थे उसमें अभी कम हो गए, 7 वाला हो गया। तो इसके कितने हो गए? 7 का हो सकता है, 8 का या 9 का। यानी विषय योजना करने वाले के, यानी अनंतानुबंधी रहित वाले के 9, 8, 7, सहित वाले के 10, 9, 8। तो 9, 8 ये तो रिपीटेड है ना दोनों जगह, 9, 8, 7। तो कॉमन दोनों को इंक्लूड करना है, तो क्या कहेंगे हमें? 10, 9, 8, 7 मिथ्या दृष्टि। सासादन में क्या होगा? सासादन में तो 4-4 का उदय है, वो विसंजना करके आवे या नहीं आवे,
मिथ्यात्व का उदय
है, मिथ्या तो नहीं है, तो भी 9, 8, 7 हो जाएगी। 4, 1, 5, 2, 7, 9, 8, 7 सासादन में। तीसरे गुणस्थान में ये 3-3 हो जाते हैं कषाय, परंतु सम्यक मिथ्यात्व एक बढ़ता है। यानी उतने जितने सासादन में उतना ही स्थान उतना ही है, प्रकृतियां अलग है। प्रकृतियां कहना है तो अलग होगी, परंतु स्थान तो वही होगा, यानी उतनी प्रकृतियों का होगा 9, 8, 7। अब सम्यक दृष्टि हुआ तो सम्यक दृष्टि के 3 कषाय का उदय है। वेदक सम्यक दृष्टि होगा तो यही पोजिशन बनेगी, 1 सम्यक प्रकृति, 3 कषाय, 1 वेद और 1 युगल।
सम्यक मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का उदय, और वेदक सम्यक दृष्टि के सम्यक प्रकृति का उदय, तो तीसरा और चौथा का स्थान जैसे में होगा, परंतु जो औक्षमिक या क्षायिक है उसके दर्शन मुनि का उदय नहीं होगा। तो उसके छह वाला होगा स्थान, मिनिमम छह, छह सात आठ, यानी ऊपर से बोलना है तो आठ सात और छह हो गए।
नीचे पर एक एक लिख सकते हैं, एक लिखा तो नीचे,
वाह वाह, हर एक गुणस्थान में अलग अलग है ना, आप सभी गुणस्थानों की एक साथ बात करना चाहते हैं, हम एक एक गुणस्थान के उदयपुर देखें। तो यहाँ यही बात बताई कि नरकों में कितने हैं, दस नौ आठ सात छह, मिनिमम छह वाला किसके होगा, चौथे गुणस्थान वाले का होगा, वो भी किसके होगा, तो शाय के औक्षमिक वाले का, हाँ उसके भी कुछ उदय नहीं है ना। हाँ, इस प्रकार सब नारकी, सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर नव ग्रहिक तक के देवों में जानना चाहिए, वहां भी गुणस्थान चार है। अब भवनत्रिक में भी शायिक भले नहीं हो, औक्षमिक तो हो सकता है, तो ये भी घटित होगा। नारकियों में पहले नरक में एक शायिक है, नीचे नहीं है, फिर भी वहां औक्षमिक है, इसलिए वहां भी घटित होगा, इसलिए सब नारकी ले लिए। तथा इसी प्रकार सामान्य तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच अतिरिक्त में भी जानना चाहिए, इसमें क्या विशेषता होगी। मैंने भी आगे की लाइन नहीं पढ़ी, आप भी नहीं पढ़ रहे, प्रतिभा आई, तिर्यंचों में कुछ विशेषता होगी, यहाँ जो दस नौ आठ सात छह स्थान बताए हैं, तिर्यंचों में कुछ विशेषता होगी। हाँ, पांचवा गुणस्थान भी हो सकता है, तो क्या विशेषता होगी इसमें, क्या हो जाएगा। जे ये हमने औक्षमिक वाला देखा, ये तीन के बदले दो पद, यहाँ दो औक्षमिक वाला होगा, वहाँ क्षायिक नहीं होगा। तिर्यंचों में पांचवें गुणस्थान में क्षायिक नहीं पाया जाता, तो यहाँ ये दो का भी स्थान हो सकता है, यानी दो एक तीन दो पांच, पांच छह सात, मिनिमम पांच का हो सकेगा। औक्षमिक समय दृष्टि पांचवें गुणस्थान वाले को कम से कम पांच का स्थान हो सकेगा। देखो क्या कहते हैं, तथा इसी प्रकार सामान्य तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में भी जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है इनमें पांच प्रकृतियों के भी प्रवेशक जीव है। क्यों है हमने देखा, किसके होगा दर्शी सर, तिर्यंचों में पांच प्रकृति स्थान किसके होगा, गुणस्थान बताओ ना, चौथा पांचवा, हाँ ये भी बताना आवश्यक। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में, ये तो सारे मिथ्या दृष्टि है, दस नौ और आठ प्रकृतियों के प्रवेशक जीव है। भले मिथ्यात्व इन जनरल बात करेंगे तो दस नौ आठ सात होते, परंतु अनंत अनुबंध की विसंयोजना की अपेक्षा वो जीव तो यहाँ जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि विसंयोजना के बाद जिसने संयोजना की है अंतर्मूर्त तक उसका मरण नहीं है, ये नियम, तो अंतर्मूर्त के बाद ही जन्मेगा यहाँ पर, यानी वो आंवली वाला नियम यहाँ घटित नहीं होगा, इसलिए यहाँ मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व का भी उदय है, अनंत अनुबंधी का भी उदय है, तो 10, 9 और 8 तीन ही स्थान यहाँ हो सकते हैं।
ये पांच वाला स्थान चौथे गुणस्थान में चारों गति में होगा।
हाँ,
पांच वाला स्थान
बोलो कैसे होगा,
शायिक समय दृष्टि,
हाँ, शायिक समय दृष्टि अभी गिना उनके, शायिक समय दृष्टि
तीसरे चौथे गुणस्थान में तीन का उदय,
तीन कषाय का,
एक वेद का,
एक वेद का
और एक युगल का, बाकी ब्रह्म गुप्ता का तो
चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं।
हाँ, चौथे गुणस्थान की बात,
तो कितने हुए कषाय, कितने,
अच्छा छह हो गए, सॉरी
कषाय तीन है ना, पांचवे में दो कषाय चौकड़ी,
नहीं 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 बराबर,
तो पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि है, और वो अनंत अनुबंधी का उदय नियम से पाया जाएगा, 10, 9 और 8 तीन स्थान हो गए, तो उनके प्रवेशक जीव है 10, 9, 8 अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में। अभी ये गुणस्थान कौन सा है, चौथा है, मैंने अनंत आनंद का उदय नहीं लेना है, परंतु किसी के सम्यक प्रकृति का उदय होगा कि नहीं होगा? वेदक समय दृष्टि भी है वहां पर, क्षायिक भी है, तो क्षायिक वाले को तो उदय नहीं होगा परंतु वेदक वाले को तो उदय होगा। तो करेंगे ना उसके बाद, तो वहां पर कितने का होगा? तीन कषाय। अभी वेदक वाले की देखेंगे, एक सम्यक प्रकृति, तीन कषाय, एक वेद और एक युगल, सात हो जाएगी। सात आठ या नौ हमने देखे। हाँ भाई जी, गुप्ता को हम एक डालो या दो डालो, सात आठ नौ, ये तीन हो गए वहां पर। क्षायिक वाले को कितने हो गए? छह हो गए। तो जैसे हमने नरक में देखा था छह वाला मिनिमम स्थान, परंतु यहाँ अनुदिश से सर्वार्थ सिद्धि तक के यहाँ वो दस वाला होगा ही नहीं, दस वाला स्थान नहीं होगा यहाँ पर। हाँ मिथ्या तो नहीं है वहां, क्या लेते हैं? मिथ्या तो भी लेते हैं और चार कषाय भी लेते हैं। यहाँ सम्यक प्रकृति लेंगे तो तीन ही कषाय हो जाते हैं। आठ सात छह कहेंगे मिनिमम, कितना है कहना है तो छह कहेंगे। तो देवों में नौ आठ सात और छह प्रकृतियों के प्रवेशक जीव है। इसमें चार अभी बताओ कौन कौन से हो गए? नौ आठ सात छह
देवों में।
हाँ देवों में वेदक तो समय दृष्टि के
नीचे के देवों में तो शाही
नौ आठ सात हो गए।
हाँ नौ आठ सात
नीचे की बात नहीं, अनुदिश अनुत्तर की बात
है। छह वाला जो शाही है
अनंत
अनुबंध की भी संयोजना, अरे उसकी तो वही
वो तो
है उसका जो पहले नहीं संयोजना होगी।
तो आठ नौ आठ सात किसके है? वेदक समय दृष्टि। और आठ सात छह किसके है? क्षायिक समय दृष्टि। आठ और सात ये ओवरलैपिंग है, दोनों में कॉमन है, क्योंकि वो तो भय जुगुप्सा के कारण बनते हैं। वो तो किसी के भी हो सकती है, क्षायिक वाले के भी है, वेदक वाले के भी। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, जिस मार्गणा में इनमें से स्थान घटित हो गए ना, जहाँ मनुष्य मार्गणा आती है वहां तो वो आगे वाले सब घटित हो गए। अदरवाइज तिरियंच तक तो पांच का स्थान होता है मिनिमम, तो जिस मार्गणा में जिन जीवों की बात है वहां उसको समझना। इस प्रकार स्थान समुत्कीर्तना को समाप्त करके, ये कहाँ है, कौन से स्थान है, इतनी बात बताई। हाँ
इंद्रिय मार्गणा में लगाए।
अच्छा आप इंद्रिय मार्गणा में लगाएंगे। हाँ
तो पंचेंद्रिय में तो पूरे आ गए लोग,
पंचेंद्रिय में, पंचेंद्रिय जो मार्गणा है तो उनमें तो सभी स्थान आ गए। हाँ अभी चतुर्इंद्रिय तक लगा, चतुर्इंद्रिय तक लगा लो,
चतुर्इंद्रिय तक लगाया।
हाँ
तो वो सब मिथ्या दृष्टि है।
हाँ
दस में तो
दस नौ और आठ की ही होगी, सात वाला नहीं होगा, क्योंकि वो अनंत अनुबंधी के उदय से रहित वाला स्थान उसमें नहीं पाया जाएगा।
ऐसे तो होता है पहले कुछ स्थान पे, लेकिन इनमें नहीं होगा।
हाँ इनमें नहीं होगा।
ऐसे अपर्याप्त दशा में शासाधन वाले लेते हैं तो इसमें भी दस नौ आठ और सात का स्थान होगा।
दस वाला स्थान शासाधन में होता ही नहीं।
नहीं नहीं अपर्याप्त दशा में जो शासाधन में हम लोग जो दूसरी अपेक्षा से देख रहे हैं कि शासाधन में मरण होकर एक केंद्रीय में भी जा सकता है, वो अपेक्षा से सात वाला स्थान भी हो जाएगा।
सात वाला तो होता ही, रेगुलर ही होता है।
दस नौ आठ वाला होता है और ये सात वाला भी हो जाएगा।
नौ आठ सात वाला आप कहना चाहते हैं? नौ आठ सात शासाधन वाले, नौ आठ सात।
मैंने
टेबल में तो लेते ही नहीं उसको, वो तो एक अपेक्षा ख्याल में रखते हैं, उसको रेगुलर में नहीं लेते। एक वो सूक्ष्म अपेक्षा है किसी, यानी किसी की दो मत है ना उसमें,
वो ही मैंने बताया कि दूसरे में अनित्य का अपेक्षा,
वही बात है, वो तो उसमें हो जाएगी क्योंकि शासाधन के नौ आठ सात है वो वहाँ घटित हो गए, पर मिथ्या तो में सात वाला स्थान नहीं होगा। इस प्रकार स्थान समुत्कीर्तना को समाप्त करके, कौन से स्थान है उसको बता के, अब इन स्थानों में प्रकृतियों की समुत्कीर्तना करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। आपने 10 वाला स्थान बताया, 9 वाला बताया, या कोई भी बताया, तो ये 9 वाला स्थान उसमें प्रकृतियां कौन कौन सी होगी, क्योंकि संख्या उतनी ही होने पर प्रकृतियां अलग अलग गुण स्थानों में अलग अलग है, उसकी बात हम करेंगे। एदेशु ठानेशु पयड़ी निर्देशो कायवो भवदे, इन स्थानों में प्रकृतियों का निर्देश करना योग्य है। स्थान तो बताए, उसमें प्रकृतियों के नाम कहना भी योग्य है। पूर्व में कहे गए इन उदीर्णा स्थानों में, उसको प्रकृतियों के प्रवेशक कहते, ये तो उदीर्णा के स्थान है, किन प्रकृतियों को लेकर कौन सा स्थान उत्पन्न होता है यह जतलाने के लिए यहाँ पर प्रकृतियों का निर्देश करना चाहिए, अन्यथा तद विषयक सम्यक ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, समीचीन ज्ञान तद उस संबंधी नहीं होगा, केवल वो प्रकृतियों की संख्या गिनने से काम नहीं चलेगा। एय पड़दिम पवेसेदि सिया कोह संजलनम वा सिया मान संजलनम वा सिया माया संजलनम वा सिया लोभ संजलनम वा, एक प्रकृति का प्रवेश करने वाला जीव कदाचित क्रोध संज्वलन को, कदाचित मान संज्वलन को, कदाचित माया संज्वलन को और कदाचित लोभ संज्वलन को प्रविष्ट करता है। कदाचित कहना क्योंकि किसी एक के उदय के साथ जीव श्रेणी चढ़ता है, क्रोध से ही चढ़ेगा तो फिर बाद में वो मान वाला होता है, बाद में माया वाला, बाद में लोभ वाला। कोई ऐसा हो सकता है शुरू से ही मान के साथ चढ़ेगा,
मान माया लोभ,
तो मान रहेगा फिर बाद में माया लोभ हो जाएगा। कोई लोभ के साथ ही चढ़ेगा तो थ्रूआउट लोभ के ही उदय वाला रहेगा, परंतु उदय होगा तो एक ही का होगा, इसको कहते क्रोध का या मान का माया का लोभ का। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, एक प्रकृति का प्रवेशक जीव है यह पहले समुत्कीर्तना अनुयोग द्वार में कहे आए हैं। इस समुत्कीर्तना के बाद इसका नाम क्या लिखा था, प्रकृति समुत्कीर्तना, ओ स्थान समुत्कीर्तना और प्रकृति समुत्कीर्तना, समुत्कीर्तना के दो भेद। अभी समुत्कीर्तना में ही प्रकृति समुत्कीर्तना देख रहे, स्थान में 10, 9, 8, 7, 6, 5 वगैरह वगैरह देख रहे, अभी प्रकृति समुत्कीर्तना देख रहे।
पहले
समुत्कीर्तना में दो भेद किए, स्थान समुत्कीर्तना, अब हम देख रहे हैं प्रकृति समुत्कीर्तना। स्थान में संख्या बता दी कितने का स्थान है, 10 का है, 9 का है, 8 का है, 3 को छोड़कर 1 तक हमने देखे। अब ये जो बताए एक वाला स्थान, वो कौन सी प्रकृति वाला है, तो क्रोध संज्वलन भी हो सकता है, मान भी हो सकता है, माया भी और लोभ। तो एक प्रकृति का प्रवेशक जीव है यह पहले समुत्कीर्तना अनुयोग द्वार में कहे आए हैं। सो उस विषय में एक प्रकृति का प्रवेश करने वाला जीव किस प्रकृति का प्रवेशक होता है, ऐसी आशंका करके सिया कोह संजलनम वा इत्यादि वचन कहा है। प्रवेश करता है ने वो आवली में प्रवेश करता है ने उदयावली में प्रवेश करता है ने उदीर्णा करता है, पहले बताया था ना आवली में प्रवेश करने वाले जीव। सिया कोह संजलनम वा इत्यादि वचन का है, क्रोध के उदय से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के वेद की प्रथम स्थिति के उदयावली के भीतर प्रवेश करने पर, अब वेद का उदय शुरू है अभी चालू है, और जब उसके उदयावली मात्र निषेक बाकी है, उदय तो चल रहा है, उदय और आवली काल तक चलेगा, परंतु आवली मात्र निषेक बाकी है, तभी ऊपर से नीचे उदीर्णा होने के लिए कुछ नहीं बचा। तो जब वेद के प्रथम स्थिति के, प्रथम स्थिति समझते हैं ना लक्ष्मीदेव, अंतर किया है, अंतर के बाद नीचे की जो पहली स्थिति प्रथम स्थिति, तो वेद की प्रथम स्थिति के उदयावली के भीतर प्रवेश करने पर, यानी अभी प्रथम स्थिति में मात्र उदयावली इतने निषेक बाकी है, वहां से लेकर वह जीव एक क्रोध संज्वलन को ही उदीर्णा में प्रवेश कराता है। यहाँ उदीर्णा में प्रवेश कराता है लिखा, पहले तो दोनों का ही प्रवेश होता था, वेद का भी और क्रोध का भी, अब यहाँ मात्र क्रोध का ही प्रवेश करा रहा है। उसी जीव के द्वारा क्रोध की प्रथम स्थिति के उदयावली में प्रवेशित करने पर वहां से लेकर वह जीव मान संयुलन को उदीर्णा रूप से प्रवेश कराता है। उसी जीव के मान की प्रथम स्थिति के उदयावली में प्रवेश करने पर वहां से लेकर माया संयुलन को उदीर्णा रूप से प्रवेश कराता है। इसके बाद यानी हर एक की अपनी अपनी एक आवली बाकी रहती है, तब दूसरा वहां उदीर्ण रूप से प्रवेश करता है।
यहाँ पे क्रोध का उदय है तो तीनों का उदय नहीं है,
नहीं।
अभी क्रोध का उदय आवली में प्रवेश हो गया,
हाँ।
तो मान की उदीर्णा चालू हो जाएगी यहाँ पे,
तो यहाँ पे उदयावली में प्रवेश यानी उदयावली पूरा, अभी उदयावली इतना ही बाकी रहा प्रथम स्थिति में, तब ऊपर का उपशमित हुआ,
हाँ उपशम हो गया,
और नीचे प्रथम स्थिति में मात्र उदयावली में,
पर अभी उदय तो क्रोध का ही चल रहा है,
चलेगा एक आवली तक,
हाँ। तो मान की उदीर्णा कैसे बताइए, क्योंकि मान का उदय नहीं हुआ, अभी उदय तो क्रोध का है, उदयावली में प्रविष्ट हो गया तो उदय क्रोध का चल रहा है, तो वहाँ पे मान का उदय नहीं है, तो मान की
उदय नहीं, मान का उदय होगा वहाँ पर, क्योंकि क्या है कि वो उच्चिष्ठावली कहलाएगी ना, वो एक एक निषेक टर्न होकर उदय में आएगा, उच्चिष्ठावली कहलाएंगे, वो एक एक वाला मेरे ख्याल से वो वेद का भी वैसे होगा, तभी तो उदीर्ण कहेंगे ना उसको, उदयावली उदीर्ण रूप से प्रवेश कराता है, यानी वो तो अंतिम जो आवली प्रमाण शेष रहेगी ना उच्चिष्ठावली,
वो
तो टर्न होके उदय में आएगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम स्थिति बनी तो क्रोध वेदक काल से एक आवली ज्यादा बनी,
हाँ ऐसे ही होगा ना, हाँ।
तभी इसका मतलब ये क्रोध वेदक काल जितना है,
हर एक की अंतर्मूर्त हमेशा अंतर्मूर्त प्रमाण उदय उसकी स्थिति बनती है, जो नीचे प्रथम स्थिति है वो अंतर्मूर्त प्रमाण है, वो घटते घटते उदय घटते घटते आवली प्रमाण शेष रहा तो उसका उदय मिट जाता है और
मान का चालू,
मान की उदीर्णा वगैरह होकर उसके अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक तैयार होते हैं प्रथम स्थिति में, और तभी ये जो ये एक आवली बची वो तो टर्न होकर उदय में आएगी, तभी शुरू हो जाए, ये घटते घटते आवली प्रमाण रही ना तभी मान की उदीर्णा हो जाएगी, ये अपना उपशमना और क्षपना का जो विधान है नवे गुण स्थान में लिख के लाया है,
अरविंद मैंने
लिखा, अल्लाह वाला
लेकिन हम तो अंतकरण कर रहे हैं तभी बदल कर प्रथम स्तरीय, तो जब हमने
देखो
नीचे से दूसरा पॉइंट
नीचे के दूसरा नहीं नीचे वाला छह वाला अंतर करने के पश्चात प्रथम स्थिति में एक आवली शेष रहने पर उपशम सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्यात्व का, हाँ क्षायिक के सन्मुख सम्यक प्रकृति का, क्षायिक में वह अंतर कहाँ है, उपशम श्रेणी आरूढ़ के यथायोग्य तीन वेदों का जिसका उदय हो उसका उदय नहीं रहता, जहां तक उदय है वहां तक उदीर्णा है वो अपवाद वगैरह बताएं, आवली स्थिति रहने पर उदीर्णा नहीं होती, ये कैसे लिखते हैं शायिक सम्मुख सम्यक प्रकृति का उसकी उदीर्णा नहीं होती, ठीक है अच्छा उदीर्णा उदीर्णा के बराबर है, यानी प्रथम स्थिति में जिसका अवेद का उदय है क्रोध का है मान का है माया का है उसकी स्थिति घटते घटते एक आवली प्रमाण शेष रही
उदय भी मिट जाएगा,
अब उदीर्णा तो है ही नहीं है उसका उदय भी मिट जाता है, ये तो बात आएगी अपने क्रम से, क्योंकि ये अपना यहाँ का विषय नहीं है। वहाँ क्या होता है फिर सामने पुस्तक में और आप इमेजिन करें। हाँ हाँ, ये तो लब्धि सार में, सपना सार में आएगी। ये यहाँ पर भी है ना, कितना, कौन सा भाग है,
13
14 15 होगा। अभी टाइम है 6 महीने उसके बाद। नहीं, ये तो आसान है, उदीर्णा वाला प्रकरण आसान। अभी हमने देखा था कि मान की, हाँ, इसके बाद माया संगुलन की प्रथम स्थिति के उदयावली में प्रविष्ट होने पर उससे आगे एकमात्र लोभ का प्रवेशक होता है। ये प्रवेश करता है ना, उदयावली में प्रवेश करता है, अथवा अपने अपने उदय से चढ़े हुए जीव के वेद की प्रथम स्थिति के उदयावली में प्रविष्ट होने पर क्रोध संज्वलन आदि का प्रवेशक होता है, ऐसा कहना चाहिए। एक बात है, उदयावली में प्रविष्ट होना है ना, सभी नीचे कूदने ही बाकी रहना, और प्रवेशक होता है ना उसका उदीर्णा शुरू हो जाती। दो शब्द आए यहाँ पर। सर्वत्र सिया शब्द का फल एकांत रूप अवधारण का निषेध करना है। एकांत रूप अवधारण ने कोई एकांत से ऐसा नहीं माने कि मात्र क्रोध ही है एक प्रकृति रूप, ऐसा नहीं है। क्रोध भी हो सकता है, मान भी, माया भी, लोभ भी, यानी किसी एक कषाय के साथ श्रेणी चढ़ने का कार्य हो सकता है। तो एकांत रूप कोई समझ न ले, उस मान्यता का निषेध करना है, उस समझ का निषेध करना है, इसलिए अवधारण का निषेध बताए। एकांत रूप अवधारण है नहीं ज्ञान, एकांत रूप कोई समझे नहीं इसलिए ये बात बताई है। और वा शब्द च रूप विकल्प का वाचक है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। वा शब्द का अर्थ अथवा नहीं लेना है, और के अर्थ में लेना है। इस प्रकार ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहो या अपने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में भी वा शब्द और के अर्थ में ही उन्होंने लिया, और हम उसको अगर या लिखते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। इस प्रकार ये चार भंग एक प्रकृति के प्रवेशक के होते हैं, इस प्रकार इस अर्थ के सूचक उपसंहार वाक्य को कहते हैं। देखो स्थान कौन सा है,
एक प्रकृति,
इसको स्थान कहेंगे, और भंग किन कौन से, चार अलग अलग। प्रकृति के बदलने से भंग होते हैं, एट ए टाइम जितने प्रकृति हैं उसको स्थान कहेंगे। अब यहाँ तो एक ही है, फिर भी वो एक ही प्रकृति क्रोध भी हो सकती है, यानी संज्वलन क्रोध भी, मान भी, माया भी, लोभ भी, कोई भी हो सकती है, तो इसका कहते हैं उसको भंग कहेंगे। तो एक प्रकृति वाले चार भंग हो गए। अब इस पद्धति से हमने पढ़ा नहीं है, आगे हम सोचेंगे दो प्रकृति वाले भंग कितने हो,
12, 4 और 3 वेद।
इन लोगों को जब पूछती हो तो इनको ही बताना है, जिसको पूछा जाए वही विचार करे, क्योंकि वहां 3 वेद भी पलटेंगे, एक एक वेद में 4-4 कषाय लगेंगे, तो 3 वेदों के 3×12 भंग हो। युगल में, हाँ, अभी तो हम दो प्रकृति बता रहे, जितने हम नीचे आएंगे यानी जितने हमारे वो अक्ष बदलेंगे, जहाँ जितने ऑप्शन होंगे, 2 युगल है तो 2 युगल है तो हम 2 से गुना करेंगे और, तो उतने 24 और हो जाएंगे भंग। वहाँ भय और जुगुप्सा को बदलेंगे तो उसमें, और फिर आगे सोचेंगे किस तरह से विचार करना है, ये हम अभी ये देख रहे हैं। इसको कहेंगे भंग, जितनी अलग अलग प्रकृतियां हो सकती है, एक तो एट ए टाइम कितनी होती है, तो ये एक वाला एक स्थान, एक में तो बस जितने बदलते उसको ले लिया, अब 2 में क्या है, 2 प्रकृतियां हैं तो दोनों ही बदल सकती हैं, उसमें से जो एक है वो वेद का स्थान है और एक है वो कषाय का है, तो वेद में भी 3 वेदों का अलग अलग हो सकते हैं और कषाय में 4 अलग अलग हो सकते हैं, तो फिर एक एक के साथ 4-4 लगाओ, तो 4×3 करना, इतने भंग हो गए वहां पर। तो यही बात यहाँ बता रहे हैं, अभी तो हमने एक की बात पढ़ी कि इतने तो भंग हो गए, अब इसके उपसंहार वाक्य को कहते हैं। एवं चत्तारी भंगा, इस प्रकार 4 भंग होते हैं, यह सूत्र सुगम है। अब आगे के भंग बताएंगे। दुन्नम पयड़ीनम पवेशगस्स बारस भंगा, दो प्रकृतियों के प्रवेशक के बारह भंग होते हैं। अब हमें ख्याल में है ना, डायरेक्ट उन्होंने तो ये तो कुछ याद करने की रटने की तो बात नहीं है, ये तो हमें डिराइव करने की बात है कि दो में बारह कैसे हो सकते हैं। तो उसमें ऑप्शनल प्रकृति कितनी है, वेद में तीन है और कषाय में चार है, क्योंकि तीन वेदों का एक एक संज्वलन के साथ अक्ष परावर्तन होकर। प्रतिभाता, ये अक्ष परावर्तन नाम कहाँ सुना था आपने? प्रमाद में तो वहाँ कौन से कितने कितने थे लाइन, हमने कितने कितने में अक्ष परावर्तन किया था? विकथा, विकथा, कषाय और इंद्रियों में हमने परावर्तन, क्योंकि बाकी एक एक था तो उसमें क्या परिवर्तन करना है। तो इसको कहते हैं अक्ष परिवर्तन करना है क्या, एक वेद को फिक्स रखो पहले, फिर क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ, इसको पलटाओ, इसको कहेंगे अक्ष परिवर्तन। तो अक्ष परावर्तन होकर उतने भंग निर्बाध रूप से उपलब्ध होते हैं। ये निर्बाध हुआ, निर्बाध रूप से यानी उसमें कोई बाधा नहीं, ये सब उत्पन्न होते हैं। यथा कदाचित पुरुष वेद और क्रोध संज्वलन को प्रवेशित करता है, यानी जीव पुरुष वेद के साथ क्रोध को प्रवेशित कराता है। कदाचित पुरुष वेद और मान संज्वलन को प्रवेशित करता है, कदाचित पुरुष वेद और माया संज्वलन को प्रवेशित करता है, कदाचित पुरुष वेद और लोभ संज्वलन को प्रवेशित करता है। इस प्रकार पुरुष वेद के साथ चार भंग प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार स्त्री वेद और नपुसक वेद के साथ भी प्रत्येक के चार भंगों का उच्चारण कर ग्रहण करना चाहिए। स्त्री वेद के साथ भी क्रोधमान माया लोभ को पलटाओ, नपुसक वेद के साथ भी। इसलिए दो प्रकृतियों के प्रवेशकों के बारह भंग होते हैं यह सिद्ध हुआ। ये ख्याल में आई बात, बिल्कुल आसान है, उसमें कोई यानी न समझने जैसी बात नहीं। तीन प्रकृति के में कितने हो गए भंग, होती नहीं है। इसलिए कहते चहुन्नम पयड़ीनम पवेशगस्स चतुर्विशम भंगा, चार प्रकृतियों के प्रवेशक के 24 भंग होते हैं। अभी तक कितने देखे हमने, 12। अब क्या प्रवेश होगा, युगल, एक युगल, पूरा युगल ही चेंज हो गया, हास्यरति का युगल या शोकरति का, वहाँ चार प्रकृति वाली नहीं बात लेनी। हास्य के साथ ऐसा नहीं कॉम्बिनेशन होता कि हास्य के साथ अरति हो जाए, हास्य के साथ रति ही होगी, इसलिए उसमें फिर और अलग अलग चार का नहीं लेना है, इसलिए दो से ही गुणा करेंगे। पहले 12 थे प्रकृतियां, यहाँ चार हुई है, परंतु दो की जोड़ी फिक्स है, उसमें यदि कोई पॉसिबिलिटी होती तो हमें चार से गुणा करना पड़ता, इसलिए हम युगल कहते हैं, यह युगल या दूसरा युगल। इसलिए यहाँ 24 प्रकृति, 24 का भंग होगा, चार प्रकृतियों के प्रवेशक के 24 भंग होते हैं, क्योंकि हास्य रति और अरति शोक इस संज्ञा वाले दो युगलों के तीन वेद और चार संज्वलन के साथ संयोग करने पर उनके भंगों की उत्पत्ति देखी जाती है, यानी उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं तो उसमें इतने भंग होंगे। यथा कदाचित हास्यरति पुरुष वेद और क्रोध संज्वलन को प्रवेशित करता है, कदाचित हास्यरति पुरुष वेद और मान संज्वलन को प्रवेशित करता है, कदाचित हास्यरति पुरुष वेद और माया संज्वलन को प्रवेशित करता है, तथा कदाचित हास्यरति पुरुष वेद और लोभ संज्वलन को प्रवेशित करता है। हमने क्या देखा, हास्यरति को फिक्स रखा, पुरुष वेद को भी फिक्स रखा, और अक्ष परिवर्तन क्रोध मान माया लोभ में किया। अब क्या करना, चार हो गए ना, फिर मूल पर क्रोध पर आ गया अक्ष अपना, तो फिर अभी यहाँ हमने पुरुष वेद के बदले अभी हमने स्त्री वेद लेना, तो उसमें क्रोध मान माया लोभ का परिवर्तन करा, फिर यहाँ पर तीसरा लेना। ऐसा नियम है, हमारे पास तीन पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति हास्य रति की, दूसरी पंक्ति है कषाय वेदों की और तीसरी कषाय
कषाय की।
पहले दो का पहला यह तो एक ही स्थान है हास्यरति का, इसमें पहला पुरुष वेद रखा और ऊपर की जो क्रोधमान माया लोभ है उसका अक्ष परिवर्तन किया। तो कहते अक्ष जब लास्ट लोभ तक गया तो वापस पहले स्थान पर आता है, क्रोध पर आया, पूरा लौट कर वापस आया तो अभी इसका दूसरे स्थान पर ले जाओ पुरुष वेद का स्त्री वेद के साथ। फिर उसमें पूरा घुमाओ अक्ष को क्रोधमान माया लोभ, फिर वो क्रोध पर आ जाएगा तो ये स्त्री वेद के बदले भी नपुसक वेद ले लो। इन्हें एक ही हास्यरति पर तीन वेद लगाएंगे और उसमें चार, तो एक युगल पर कितने हुए 12, तो दूसरे युगल पर 12, 24 हो गए। इस प्रकार नीचे से चौथी पांचवी लाइन, हास्य और रति का पुरुष वेद के साथ चार संजलनों में संचार करने पर, इसको संचार कहते हैं, पलटना है ना, क्रम से एक एक को पलटाएंगे उसको कहेंगे संचार करने पर चार भंग होते हैं। इसी प्रकार स्त्रीवेद और नपुसक वेद के आश्रय से भी प्रत्येक के चार भंगों की उच्चारणा करनी चाहिए, यानी जैसे यहाँ लगा के दिखाया वैसे करना चाहिए। इसलिए हास्य रति की अपेक्षा 12 भंग होते हैं, हमने तो करके देखे ना अभी। तथा इसी प्रकार अरति शोक की अपेक्षा 12 भंग उत्पन्न होते हैं। अभी अरति शोक के साथ पुरुष वेद पर 4, स्त्री वेद पर 4, नपुसक वेद पर 4। इस प्रकार चार प्रकृतियों के प्रवेशक जीव के 24 भंगों की उत्पत्ति सिद्ध हुई। यहां तक तो हमने चार के स्थान देखे। अभी पंचन्नम पयडिनम पवेसगस्य चत्तारी चौबीसम भंगा, पांच प्रकृतियों के प्रवेशक जीव के 4 24 भंग होते हैं। 4 24, ये 24 का भी ग्रुप बनाया उन्होंने। हाँ, तो उसमें 96 चार बार। यथा हास्य रति और अरति शोक इन दो युगलों का चार संज्वलनों का और तीन वेदों का तथा भय और जुगुप्सा का क्रम से प्रस्तार करके, अब ये भय जुगुप्सा को लेना, यहाँ पर भय के साथ 24 भंगों की एक शलाका, जुगुप्सा के साथ उससे भिन्न दूसरी यानी दो शलाका, ये दूसरी हुई, तथा भय और जुगुप्सा के बिना सम्यक प्रकृति के उदय का अवलंबन लेकर उन दोनों से भिन्न एक। इस प्रकार संयत जीवों में 3 24 भंग प्राप्त होते हैं। इसकी बात देखेंगे हम विस्तार से। पुनः क्षायिक सम्य दृष्टि और उपशम सम्य दृष्टि संयता संयत जीव के भय और जुगुप्सा के बिना प्रत्याख्यानावरण कषाय के प्रवेश करने से अन्य एक 24 भंग रूप शला का प्राप्त होती है। इस प्रकार पांच प्रकृतियों के प्रवेशक जीव के 4 24 भंग प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सब भंगों का योग इतना होता है 96। अभी इसकी बात करेंगे। हमें पांच प्रकृतिक भंग प्राप्त करना है, तो पांच प्रकृति वाला भंग कैसे होगा? एक तो देखो 2 1 3 2 5 और भय जुगुप्सा को 0 रखेंगे, तो ये बात कहाँ हो सकती है? पांचवे में हो सकती, औक्षमिक शाही वाले पांचवे। छठे में लेना है तो छठे में एक का उदय कहेंगे हम, तो एक का उदय है छठवे में, 1 2 2 4 और 5 का यहाँ भी हो सकता है, 5 का भी यहाँ भी हो सकता है, भय के साथ भी जुगुप्सा के साथ भी, या वेदक कराओ सम्यक प्रकृति के साथ 1 2 3 2 5 और जीत यहाँ 0 रखो। फिर से ये पांच प्रकृति वाला, हम पहले उदय स्थान की अपेक्षा उदीर्णा की बात करेंगे। तो अभी जो हमने लिखा है सम्यक प्रकृति एक, एक संज्वलन कषाय, एक वेद, एक युगल और भय जुगुप्सा 0, ये पांच वाला एक स्थान मिला, पांच वाला दूसरा स्थान, अभी ये जो छठे सातवें वाले को ही एक वेद, सॉरी एक कषाय, एक वेद, एक युगल और जुगुप्सा वाला, कितने हुए? चार तीन बारह, चौबीस। चौबीस के साथ जुगुप्सा वाला है, उसको एक से ही गुणा करेंगे तो उसके चौबीस का एक ग्रुप हो गया। अकेले जुगुप्सा के साथ चौबीस, अकेले भय के साथ भी चौबीस। ये बात ख्याल में आई? अब उन्होंने पांचवे में भी घटित किया, पांचवे वाला क्षय क्या औक्षमिक लिया, दो एक तीन दो पांच, उसका भी घटित होगा तो उसके भी चौबीस। इस तरह से तीन चार लिए अलग अलग। पांचवे वाला ख्याल में आया? पांचवे वाला तो औक्षमिक क्षय लेना है, दो कषाय, एक वेद और एक युगल, इनका पांच और भयजुगुप्सा जीरो पर रखती थी, ये एक इसमें चौबीस हो गए। फिर हमने छठे, हाँ चौबीस कैसे हुए अभी हम देखते हैं। भंग यहाँ दो क्रोध या दो मान या दो, तो ये कषाय चार मल्टीप्लाइड बाय तीन वेद मल्टीप्लाइड बाय दो युगल, चार त्रिक बार दुनी चौबीस, जीरो पर चौबीस हो गए, एक पर चौबीस हो गए, इस पर चौबीस हो गए, इस पर चौबीस हो गए। इसमें से हमें प्रांत प्रकृति की लेना है, तो अभी हमें पांचवे गुणस्थान वाला ये जीरो वाला स्थान लिया, ये चौबीस मिले हमको, ये हमने अलग रखा पांचवे गुणस्थान के चौबीस। अभी छठे गुणस्थान में एक 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 कषाय है, फिर भी चार त्रिक बार दुनी चौबीस तो भंग भय। आप यहाँ उदय की बात चल रही है, आपका प्रश्न है भय जुगुप्सा निरंतर बनती है परंतु निरंतर उदय रूप नहीं है। बात सही, आप प्रश्न पूछना ऐसा, क्योंकि ऐसे हमें लगता है अरे हम अभी तक तो हमने भय जुगुप्सा को वहां तो हम बंद का अधिकार देख रहे थे, अब यहाँ पर वेदक अधिकार शुरू हुआ है। पूछना ऐसा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन तो हर एक के माथे में चल रहा है, ये तो निरंतर निरंतर प्रकृति हम अभी तक देख के आए हैं, तो हाँ होता है क्या, हमें एक अपेक्षा की सोचते हैं तो दूसरी छूट जाती है अपने, तो हमारी कहाँ गलती हुई अपने ख्याल में आते ना, बोलने से ये पकड़ में आएगी, नहीं तो ऐसी चलेगी फिर वो तो कन्फ्यूजन जैसे हो जाता है। बात पूछ के तत्काल उसका निवारण करना अच्छा है। अभी हम छठे गुणस्थान की बात, छठे सातवें की बात करें, छठे सातवें वाले ये चार वाला नहीं हमको लेना है, हमें तो पांच प्रकृति वाला ही लेना है, तो छठे सातवें वाला ही औक्षमिक समय दृष्टि होगा या क्षायिक होगा, तो उसके एक कषाय है, एक वेद है, एक युगल है और भय है, उसके साथ चौबीस लिए, भय के साथ चौबीस, यानी क्षायिक समय दृष्टि वाला छठे सातवें वाला भय के साथ चौबीस लिए, जुगुप्सा के साथ चौबीस लिए, अभी तक तीन मिले ना हमको। अभी यहाँ पर छठे सातवें वाला वेदक कर दो, तो एक सम्यक प्रकृति, एक कषाय, एक वेद, एक युगल, और अभी इसमें भय जुगुप्सा को जीरो रखो, तो भी पांच वाला होगा, वो भी चौबीस वाला और एक स्थान मिल जाएगा। इस तरह से अलग, यानी ये भय जुगुप्सा के चार अलग अलग विकल्प होते हैं, परंतु एट ए टाइम हम इसको गुणा नहीं करते, एक जीव में ऐसे नहीं हो गए, एक जीव में तो ये ऐसे अलग अलग भंग होते हैं, परंतु यहाँ तो भय जुगुप्सा इसके जो उदय रूप जो है वो अलग अलग है, उसमें चार पॉसिबिलिटीज है, और वो एक ही स्थान पर ये चारों घटित नहीं होते। मुझे क्या कहना, देखो ये जो हम चार गुना तीन गुना दो कर रहे थे वो एक विशिष्ट स्थान पर सभी घटित होते तो वहाँ आपस में गुणा करते, परंतु ये हमने 24 24 24 जो अलग अलग किए, तो वही वो पांच प्रकृति का स्थान किस अपेक्षा से कहाँ है वो अलग अलग है, इसलिए उसको डायरेक्ट गुणा नहीं किया, क्योंकि कोई छठे सातवें वाले को क्षायिक वाले को है, कोई वो भय जुगुप्सा के साथ है, कोई यानी वो कॉम्बिनेशन अलग अलग है, इसके हर एक में जो 24-24 बनते हैं उसको चार बार रखा, चार चौबीस इसलिए कहा, नहीं तो डायरेक्ट हम चार से गुणा कर सकते थे, परंतु वो वैसी पोजीशन नहीं है, हम गुणा नहीं कर सकते उसको डायरेक्ट। हाँ चलो अभी आगे बढ़ेंगे। ये चार बार 24 कैसे हुआ ख्याल में आया ना, उन्होंने वो लिखे ही थे, उसी को अभी हम अपने कुट के संबंध से देखा हमने। अब कहते छन्नम पैडिनम पवेसगस्त सत्त 24 भंगा, अब ये 24 वाला ग्रुप तो वैसा ही रखा, क्योंकि जो सात प्रकृतिक जो है, छह प्रकृतिक स्थान, वो अलग अलग गुण स्थानों में भी हो सकता है और उसमें भी अपेक्षा अलग अलग बन सकती है। अभी हम पढ़ेंगे इसको, छन्नम पैडिनम पवेसगस्त सत्त 24 भंगा, छह प्रकृतियों के प्रवेशक जीव के सात 24 भंग होते हैं, यानी सात अलग अलग स्थानों पर
24-24
भंग बनेंगे। यथा उपशम समय दृष्टि या क्षायिक समय दृष्टि संयत जीव के भय और जुगुप्सा के साथ एक 24 भंग शलाका होती है। देखो कैसा लिया, उपशम समय दृष्टि, यानी यहाँ पर ये समय प्रकृति का उदय नहीं है, एक कषाय है, एक वेद है, एक युगल है, चार दो छह, और भय और जुगुप्सा दोनों का उदय लिया, तो ये छह का हुआ, तो एक तो ये स्थान, उसके भी 24 भंग, चार गुना तीन गुना दो, और भय जुगुप्सा दोनों है, उसे गुना नहीं करना है, एक तो एक ये हो गया। अब दूसरा, वेदक समय दृष्टि संयत जीव के ही भय के बिना जुगुप्सा के साथ दूसरी 24 भंग शलाका, अभी कौन सा लिया, वेदक समय दृष्टि लिया,
एक प्रकृति
का, एक सम्यक प्रकृति, एक कषाय, एक वेद, दो युगल, दो एक तीन, दो पांच, और एक अकेला
भैया जुगुप्सा,
अभी जुगुप्सा वाला लिया, भय के बिना जुगुप्सा, ये दूसरा, ये दूसरी बार 24 लिया, ये दूसरी 24 भंगशला का होती है। उसी संयत जीव के जुगुप्सा के बिना भय के साथ, यानी अकेला भय, ये भय लगाया पहले जुगुप्सा के ऊपर लगाया था, अभी मात्र भय के साथ लगा लो, वही वेदक समय दृष्टि की, तो उसके और 24 भंगशला का होगी, ये तीसरी 24 भंगशला का, ये ख्याल में आई तीन। इस प्रकार संयत जीव का आश्रय कर तीन 24 भंग प्राप्त हुए, पहले औपशम में किया, क्षायिक लिया और भय जुगुप्सा दोनों लिए, फिर वेदक लिया, अकेला भय लिया या अकेला जुगुप्सा लिया, ये तीन तो संयत जीवों के हो गए। पुनः उपशम समय दृष्टि या क्षायिक समय दृष्टि संयता संयत जीव के, अभी संयता संयत है तो दो कषाय लेना है, दो 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 दो, और ऑप्शन ही चलिया, दो एक तीन दो पांच, पांच या वो हमें छह का स्थान चाहिए, तो या भय या जुगुप्सा, यानी इसके दो हो जाएंगे। इसको पढ़ेंगे, देखो उपशम समय दृष्टि या क्षायिक समय दृष्टि संयता संयत जीव के जुगुप्सा के बिना प्रत्याख्यानावरण कषाय के साथ भय का वेदन करते हुए चौथी 24 भंग शलाका होती है। अभी देखा ना हमने, उसी जीव के भय के बिना, अब भय के अलावा बिना हम जुगुप्सा को लेंगे, भय को निकाल के जुगुप्सा को रखेंगे, प्रत्याख्यानावरण और जुगुप्सा के साथ पांचवी 24 भंग शलाका होती है, यानी हमने तीन संयत के देखे और दो औपशमिक अक्षायिक संयता संयत के देखे। अब कहते भय और जुगुप्सा के उदय से रहित, दोनों से रहित वेदक समय दृष्टि संयता संयत जीव के छठी 24 भंग शलाका होती है। ये भी ख्याल में आवे ऐसी बात है, यानी यहाँ वेदक समय दृष्टि लिया परंतु भय जुगुप्सा को जीरो रखा, तथा जिसने दर्शन मुनि का उपशम किया है या दर्शन मुह का क्षय किया है, ऐसे असंयत सम्य दृष्टि जीव के, अभी चौथे वाला लिया, तीन कषाय है उसके, औपशमिक है या क्षायिक है, तीन एक चार दो पांच, ये छ वाला स्थान लेना है ना हमको, तीन एक चार दो छ, छ वाला, और भय जुगुप्सा से रहित रखना। हाँ, तो यहाँ दर्शन मुनि का उपशम किया है, क्षय किया है, औपशमिक या क्षायिक सम्य दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाला,
भंग अलग अलग हो जाएगा क्षायिक के साथ और उपशम के साथ,
क्यों?
अच्छा वो जीरो, अच्छा वो जीरो ही है,
भंग यही हो गए, क्योंकि यहाँ दर्शन मुनि का उदय नहीं है, इतनी बात बताने, भय और जुगुप्सा के बिना, यानी वहाँ जीरो रखना। अप्रत्याख्यानावरण के प्रवेश से सातवा चौबीस भंगों का प्रकार होता है, इस प्रकार ये सात ही चौबीस भंग प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सब भंगों का योग 168 मात्र है, 68, उन्होंने र लिखा है तो लिखते होंगे उसमें 68, हम 68 कहते हैं उसको, 68 168 हो गए, सात बार लिए ना 24, अब सात प्रकृतियों की बात बताएं। सत्तन्नम बयरिनम पवेसगस्य दस चौबीस भंगा, अब सात प्रकृतियों की बात करेंगे। यथा संयत जीव के वेदक सम्यक्त्व, यानी सम्यक प्रकृति का उदय है, चार संज्वलन, तीन वेद, दो युगल, ये चार से वार्धनी 24 का एक ये बनाए, और उसमें भय और जुगुप्सा दोनों रखना है। पहला 24 भंगों का प्रकार होता है, क्योंकि हमें सात प्रकृतियां चाहिए, सात प्रकृतियों के लिए क्या रखना है, यहाँ संज्वलन एक 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 रखेंगे हम, चात्रिक बार दिन 24, उसमें सम्यक प्रकृति भी रखना, एक दो तीन दो पांच, भय जुगुप्सा दोनों लेना, तो सात हो जाएगी, सात प्रकृतिक स्थान। तो वेदक सम्य दृष्टि लिया है और ये 24 का ग्रुप रखा और भय जुगुप्सा दोनों को लिया, तो पहला 24 भंगों का प्रकार होता है। फिर उपशम सम्य दृष्टि या क्षायिक सम्य दृष्टि संयता संयत जीव के, अभी हमने एक रखा था, एक कषाय रखा था और एक वेदक सम्यक को रखा था, उसके बदले वो वेदक सम्यक को सम्यक प्रकृति निकाल कर दो कषाय रखना, तीन दो पांच, और फिर यहाँ दोनों लेना भैजुगुप्सा को, भैजुगुप्सा दोनों लो,
हाँ
सात चाहिए। तो उपशम समय दृष्टि या क्षायिक समय दृष्टि संयता संयत जीव के प्रत्याख्यानावरण, वो तो दो है ना, और भय जुगुप्सा के साथ, भय जुगुप्सा दोनों को रखना, यानी दो दो कषाय रखना, एक एक वेद रखना, एक एक युगल रखना और ऊपर दो रखना। दूसरा 24 भंगों का प्रकार होता है। पहले हमने क्या रखा था, एक वेदक सम्यक के एक सम्यक प्रकृति रखी थी, एक एक कषाय रखा, एक एक वेद रखा, एक एक युगल रखा और दोनों रखा था, भय जुगुप्सा दोनों को रखा था। अब उसी के आगे संयता संयत जीव के ही वेदक सम्यक्व और भय के साथ, वहां दोनों रखे थे, अभी संयता संयत जीव में एक सम्यक प्रकृति ली, दो दो कषाय लिए, एक एक वेद लिया, दो युगल लिए और ऊपर भय रखेंगे या जुगुप्सा रखेंगे, है ना? तो पहले में पहले भय के साथ, भय के साथ तीसरा 24 भंग और भय के बिना जुगुप्सा के साथ चौथा 24 भंगों का प्रकार होता है। चार समझ में आए? भय को बदल कर जुगुप्सा रखा। पुनः जिसने दर्शन मुनि का क्षय या उपशम किया है
ऐसे असंयत समय दृष्टि जीव के भय और अप्रत्याख्यानावरण के साथ पांचवा 24 भंगों का प्रकार होता है, यानी उसके एक कषाय बढ़ा दिया। मैंने तीन तीन रखे ना वेद, एक 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 रखेंगे, एक एक युगल रखा और उसमें अभी क्या किसको लिया पहले उन्होंने भय भी ना सॉरी
नहीं तीन कषाय एक वेद एक युगल तीन दो पांच दो सात
असंयत समय दृष्टि से दर्शन मिलने का क्षय उपशम किया ऐसे असंयत समय दृष्टि के
कई जो गुप्त साथ बिना लिया ना
भय लिया ना एक लिया भय लिया। देखो तीन कषाय
हाँ।
एक वेद
चार दो
एक युगल चार दो छह हम साथ चाहिए। अकेला भय लेना बाद में अकेला जुगुप्सा लेंगे। तो पहले भय के साथ लिया उन्होंने वो पांचवा हुआ उसी के भय के बिना जुगुप्सा के साथ छठा 24 भंगों का प्रकार होता है। ये तो छह हो गए। जिसने दर्शन मुनि का क्षय या उपशम नहीं किया है ऐसे उसी जीव के ने असंयत के भय और जुगुप्सा के बिना यानी जीरो रखना यानी तीन कषाय रखना एक वेद हाँ एक युगल और भय जुगुप्सा के बिना वहाँ जीरो रखना और ये कौन सा जीव लिया है जिसने नहीं किया है यानी उसमें एक सम्यक प्रकृति भी लेना है यानी एक सम्यक प्रकृति तीन कषाय एक वेद एक युगल हाँ और भय जुगुप्सा में जीरो। तो ये सातवां 24 पंगों का प्रकार हुआ। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव के अभी यहाँ तो यही बात लेना यह हमने सम्यक प्रकृति का उदय लिया है तीसरे वाले को सम्यक मिथ्यात्व का उदय रखना कषाय तीन ही हो जाएंगे एक वेद एक युगल और भय जुगुप्सा को जीरो रखना अनेक सम्यक मिथ्यात्व हुआ तीन कषाय हो गए एक वेद हुआ एक युगल हुआ और भय जुगुप्सा को जीरो रखा ये आठवा हुआ। सासाधन सम्यक दृष्टि जीव के सासाधन में भी 9, 8, 7 हमने तीन देखे तो सासाधन वाले को भी किसी का उदय नहीं ना मिथ्यात्व का है ना अन्य किसी का है। तो सासाधन समय दृष्टि जीव के भय और जुगुप्सा के बिना परंतु यहाँ अनंतानुबंधी है इसलिए कषाय चार हो गए यहाँ पर तो चार चार करेंगे फिर एक ही वेद हो जाएगा एक युगल हो जाएगा। तो सासाधन समय दृष्टि जीव के भय और जुगुप्सा के बिना अनंतानुबंधी का प्रवेश होने से 9वां 24 भंगों का प्रकार होता है। अनंतानुबंधी भय और जुगुप्सा के बिना अनंतानुबंधी से संयुक्त प्रथम आवली में विद्यमान मिथ्या दृष्टि जीव हमने देखा था ना उसके 9, 8, 7 होते हैं। ऑर्डिनरी समय मिथ्या दृष्टि तो 10, 9, 8 वाले होते हैं और जो अनंतानुबंधी रहित वाला है वो 9, 8, 7 वाला स्थान होता है तो उसमें से 7 वाला लेना कि अनंतानुबंधी भय और जुगुप्सा के बिना अनंतानुबंधी बिना क्यों कहा एक आवली तक उदय नहीं है इसलिए अनंतानुबंधी से संयुक्त प्रथम आवली में विद्यमान मिथ्या दृष्टि के जीव के उसमें तो तीन ही कषाय लेना है क्योंकि अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं है परंतु मिथ्यात्व का लेना एक मिथ्यात्व तीन कषाय एक वेद एक युगल और ऊपर क्या लिखेंगे भय जुगुप्सा बिना। इस प्रकार 7 प्रकृतियों के प्रवेशक जीव के 10-24 भंग प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सब भंगों का जो 240 होता है 24 × 10 अब 58 परिणम पवेशगस्य 11-24 भंगा 8 प्रकृतियों के प्रवेशक जीव के
ग्यारह चौबीस भंग होते हैं। यथा संयता संयत जीव के वेदक सम्यक आठ प्रकृतियों की बात करें ना, तो वेदक सम्यक यानी उसके सम्यक प्रकृति रखना, प्रत्याख्यानावरण कषाय संज्वलन कषाय यानी दो दो कषाय, वेद और दो युगल, भय और जुगुप्सा के द्वारा दोनों रखना है। देखो एक सम्यक प्रकृति दो कषाय तीन हो गए, एक वेद चार हो गए, एक युगल चार दो छह हो गए, अब भय जुगुप्सा दोनों को रखना है। प्रथम 24 भंगों का प्रकार उत्पन्न होता है आठ प्रकृति वाला। फिर जिसने दर्शन मोहिनी का क्षय और उपशम किया इसे असंयत सम्य दृष्टि जीव के, यानी वहां भी मोहिनी दर्शन मोहिनी का कोई उदय रूप नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के साथ और सम्यक प्रकृति के बिना, अभी जो हमने दिया था जीव संयता संयत वेदक समय दृष्टि था, तो वेदक समय दृष्टि को निकाला और एक कषाय बढ़ाया,
क्षय कर दिया ना,
हाँ औषमी के अक्षय, तो तीन कषाय हो जाएंगे, एक वेद हो जाएगा एक युगल हो जाएगा। तो उसके बिना उन्हीं पूर्वोक्त प्रकृतियों को ग्रहण करके, यानी यहाँ भी भय और जुगुप्सा दोनों को रखना। देखो दर्शन मुनि का कुछ नहीं है, तीन कषाय एक वेद एक युगल, तीन एक चार दो छः और भय जुगुप्सा दोनों, उन्हीं पूर्वोक्त प्रकृतियों का ग्रहण करके दूसरा 24 भंगों का प्रकार होता है। वेदक समय दृष्टि उसी जीव के, अभी वेदक समय दृष्टि उसी जीव लिया यानी चौथा गुणस्थान, जुगुप्सा के बिना भय के साथ तीसरा 24 भंगों का प्रकार होता है। अभी तीसरा चौथा एक बार भय को रखेंगे एक बार जुगुप्सा को रखेंगे, यानी वेदक समय दृष्टि है चौथा गुणस्थान वाला है, तो एक सम्यक प्रकृति रखेंगे, तीन कषाय रखेंगे, एक वेद एक युगल और भय या जुगुप्सा। तो अभी हमने तीसरे में तो भय को रखा और चौथे में भय के बिना जुगुप्सा के साथ चौथा 24 भंगों का प्रकार होता है। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव के, अभी हमने सम्यक प्रकृति को रखा था, वही तीन कषाय हो गए और सम्यक प्रकृति की जगह में सम्यक मिथ्यात्व आ जाएगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव के जुगुप्सा के बिना सम्यक मिथ्यात्व और भय के साथ पांचवा 24 भंगों का प्रकार होता है। अभी सम्यक मिथ्यात्व दृष्टि में भी एक सम्यक मिथ्यात्व, तीन कषाय, एक वेद एक युगल
और एक
भय या जुगुप्सा, उसके भी दो दो हो गए। तो ये पांचवा जो हुआ था भय के साथ हुआ और उसी भय के बिना जुगुप्सा के साथ, जुगुप्सा हुआ है जुगुप्सा के साथ छठा 24 भंगों का प्रकार होता है। जुगुप्सा के बिना भय की उदीर्णा करने वाले सासादन समय दृष्टि जीव के, अब ये सासादन में आ गए, सासादन में नौ आठ सात होते हैं, तो अभी वहां एक कषाय बढ़ गया, तो अनंतानुबंधी का प्रवेश होने से सातवां 24 भंगों का प्रकार होता है, यानी अभी अनंतानुबंधी है परंतु यहाँ मिथ्यात्व नहीं है, तो अनंतानुबंधी है तो चार चार हो गए, चार कषाय एक वेद एक
युगल,
चार एक पांच दो सात हो गए,
और
उसमें
भय
और जुगुप्सा। जुगुप्सा के बिना भय की उदीर्णा करने वाले वो सातवां हुआ, और भय के बिना जुगुप्सा का वेदन करने वाले, वेदन कहो उदय कहो उदीर्णा कहो, उसी जीव के आठवां 24 भंगों का प्रकार होता है। संयुक्त प्रथम आवली यानी संयोजना करने वाला, मिथ्या दृष्टि, अनंत अनुबंधी रहित मिथ्या दृष्टि, भय के साथ मिथ्यात्व का वेदन करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव की। अभी यहाँ अनंत अनुबंधी नहीं है तो एक मिथ्यात्व है, तीन तीन कषाय है, एक एक वेद है,
एक
युगल है, और यहाँ भय लिया या जुगुप्सा उसको अलग अलग करेंगे। तो पहले में पहले भय का लिया, भय के साथ मिथ्यात्व का वेदन, उसके नौवा 24 भंगों का प्रकार होता है, और भय के बिना जुगुप्सा के साथ मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाले जीव के दसवा 24 भंगों का प्रकार होता है। अब ये कौन सा लिया, भय और जुगुप्सा के बिना, क्योंकि हमने 10, 9, 8 वाला देखा था, भय भी नहीं और जुगुप्सा भी नहीं, और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी दोनों है। तो भय और जुगुप्सा के बिना अनंतानुबंधी के साथ मिथ्यात्व का वेदन करने वाले, यानी मिथ्यात्व है, चार कषाय है, एक वेद है, एक युगल है, आठ, और उसमें भय जुगुप्सा दोनों लिया, जीव के 11वां 24 भंगों का प्रकार होता है। इस प्रकार 8 प्रकृतियों के प्रवेशक जीव के 11 प्रकार के 24 भंग प्राप्त होते हैं। यहाँ सब भंगों का जोड़ 264 होता है। यही रुकेंगे अभी। जावानी के ज्ञान से सूर्य लोकालो सोवानी
नमो ओरियंताणम, नमो चित्ताणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रणम, नमो लोहे सभ्वसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो चित्ताणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रणम, नमो लोहे सभ्वसावणम। नमो ओरियंताणम, नमो चित्ताणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रणम, नमो लोहे सभ्व